मेरे पिताजी बोल सकते हैं। हालांकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर के ऊपर आया था, और उस टाइम 90s की बात है तो कंप्यूटर्स नए नए इंडिया में आए थे, और मैं कंप्यूटर का कोर्स उस टाइम लगाया था। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, शायद मेरे पिताजी को बोलते ना कि ये क्या है कंप्यूटर, और इतना नॉलेज और जानकारी हुई यानी आर्मी बैकग्राउंड के थे वो, तो एक दिन वो फॉर्म लेके आए और बोले तुझे ये करना। खाली उन्होंने एक लिबर्टी रखा उसमें कि मंगेश ये जो कोर्सेस है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा अलग 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 थे, तो उतने लिबर्टी दिया कि इसमें से चूज कर और फिर आगे जा। तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ में।
नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल का ये पहला पॉडकास्ट, और हमारे चैनल के पहले को पॉडकास्ट में मेरे परम मित्र मंगेश सूर्य जी आए, और मंगेश सूर्य जी इस फील्ड में 30 साल से काम कर रहे हैं। वाटरमैन के नाम से हमारे ग्रुप में काफी ज्यादा फेमस है, पानी के बारे में सभी तरह का नॉलेज रखते हैं, और पानी को कैसे रिसाइकल करना है, कैसे उसके बारे में काम करना है, ऐसा बहुत सारा ये काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है मंगेश जी आपका हमारे पॉडकास्ट में, और हम जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली आप करते हो और क्या काम है आपका, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको।
सबसे पहला धन्यवाद सुधीर जी, ये पॉडकास्ट में आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और कुछ मेरे क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस जो है शेयरिंग आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद उसके बारे में। सुधीर जी, हम जो काम कर रहे हैं उसका जो टैगलाइन है एनवी केयर का मतलब है एनवायरमेंटल केयर, और जो हम लास्ट 28-30 साल से ले रहे हैं, और इसके बारे में जो मेरा स्टार्ट हुआ वो है एक वाटरमैन लेबोरेटरी है जो वाटर टेस्टिंग और एनालिसिस में काम करती है, और 1995-96 से उस फील्ड में काम कर रहे हैं सर।
वाह क्या बात है, 1996, 30 साल, मतलब दो जनरेशन का जो है अंतर आया इसमें। अब इस काम को करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है?
इंस्पिरेशन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। जब कोई चैलेंजेस आते लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट होता है। हालांकि मेरा फोर्थ तक का जो स्टडी है वो गांव में हुआ है, वेरी सिंपल सा विलेज, वहाँ पर आई यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम 10 किलोमीटर्स, वो सर पे बोलते हैं ना पानी कैरी करना, तो पानी के प्रति एक अलग सा इंटरेस्ट, अलग सा लगाव उस टाइम लगता था, मुझे लगता था क्यों इतने चैलेंजेस है, तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचा जाए कि किया जाए, लकीली बोलो मेरे इंटरेस्ट के कारण बोलो ये फील्ड में मैं आ गया।
10 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है पानी के लिए, क्या बात है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके इस पूरे करियर के दौरान कौन से वो पिवोटल मोमेंट्स थे जिसने आपके करियर को एक बहुत ही अलग शेप दिया?
देखा जाए तो मेरे पिताजी बोल सकते हैं। हालांकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर के ऊपर आया था, और उस टाइम 90s की बात है तो कंप्यूटर्स नए नए इंडिया में आए थे, और मैं कंप्यूटर का कोर्स उस टाइम लगाया था। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, शायद मेरे पिताजी को बोलते ना कि ये क्या है कंप्यूटर, और इतना नॉलेज और जानकारी हुई यानी आर्मी बैकग्राउंड के थे वो, तो एक दिन वो फॉर्म लेके आए और बोले तुझे ये करना है। खाली उन्होंने एक लिबर्टी रखा उसमें कि मंगेश ये जो कोर्सेस है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा अलग 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 थे, तो उतने लिबर्टी दिया कि इसमें से चूज कर और फिर आगे जा। तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ में, क्योंकि केमिकल होने के बाद फिर जो वाटर रिलेटेड जो है वो लिंक है से, तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट।
और मैं देखता हूँ कि आप कंप्यूटर का कितना आसानी से इस्तेमाल करते हो, तो मैं भी कभी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, फिर भी मैं जेलस हो जाता हूँ कि ये मेरे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी मैं एक जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इस पूरी जर्नी के दौरान आपके कुछ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो आपको लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा किया, उसके बारे में जानना चाहूँगा।
अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, देखा जाए तो कुछ लिस्ट आउट किए नहीं है, लेकिन देखो मेरा खुद का जो लाइफ है, एक ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूँ। तो जो भी मैंने जैसा अभी जिक्र किया, जो लैब में मैं काम कर, हालांकि वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर करके हुआ करता था, बट स्टिल आई यूज टू कैरी आउट द एनालिसिस। हालांकि वो जॉब केमिस्ट का था तो मैं वो करता था, और उसके प्रति क्या क्या है क्या नहीं वो फाइंड आउट करता था, पानी के अंदर क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे ट्रीट करने का सोल्यूशन देना, वो सारी चीज़ें। तो हर एक चैलेंजेस, हर एक चीज़ें आपको सिखाती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। हर एक जगह पे हर एक चीज़ देखने का नज़रिया जो है वो अलग रहता है।
तो मंगेश जी, आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए कौन रहा है?
सुधीर जी, जैसे मैंने बताया कि करियर के स्टार्ट में वाटरमैन लेबोरेटरी जो प्लेस था, उसने मुझे एक करियर में आने के लिए चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। तो ऑफकोर्स गोखले सर जो थे वो मेरे इंस्पिरेशन थे, और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग, जो लेबोरेटरी में उनका क्या बोलते हैं उसे, देखने का नज़रिया, वो एनालिसिस, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको देख देख के मैं उस टाइम सीखता था, और तो मेरे लिए वो, हालांकि बाद में डेफिनेटली जैसा बिजनेस शुरू किया तो मैं डेफिनेट थर्मैक्स को देखता था वो लेवल, क्योंकि थर्मैक्स में मैंने फ्रीलांसर के रूप में काम भी किया था। तो अनुआगा जी जो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे, हमारे दूसरे गोखले थे मेलहम इंजीनियर्स करके, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन। तो जो भी मेरे एक्स बॉसेस थे डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन रहे मेरे लिए।
तो हर एक एक्स बॉस से अपने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। तो अगर मैं लिस्ट डाउन करना चाहूँ कि गोखले सर की एक क्वालिटी, उसके बाद थर्मैक्स के जो आपके वो थे उनकी एक क्वालिटी, और बाद में वापस से गोखले की जो क्वालिटी, तो क्या एक वो क्वालिटी थी?
गोखले सर से मैंने ये जो सीखा, जो वाटरमैन लैब के गोखले थे उनसे ये सीखा कि एक छोटी सी चीज़ को आप डिटेलिंग में कैसे देख सकते हो, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हो, एनालिसिस के बाद उसको आप एज अ कंसल्टेंसी करके कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो मैंने अच्छे से सीखी। मेलहम के गोखले सर जो थे उनसे मैंने ये सीखी कि आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो इंजीनियरिंग कैसी होनी चाहिए, फैब्रिकेशन डिटेल्स आप कैसे कर सकते हो, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट जो बोला जाता है वो वहाँ पे मुझे मिला। और अनुआगा जी से तो आप जानते हो, बेसिकली आइडियल फॉर एवरीवन ऑफ अस, तो बिजनेस को वो लेवल से, वो विजन से कैसे देखना है, बड़ा कैसा होना है ना। सो
ग्रेट, नाइस। मंगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा R&D और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अभी करंट ट्रेंड किस तरह से चल रहा है?
देखिए, मैंने जब ये फील्ड में शुरुआत की थी तो मैं भी खूब रॉ था, और हालांकि उस टाइम 90s की बात है, उस टाइम ये सारी चीज़ को कोई भी इंडस्ट्री वो एंगल से देखती नहीं थी। हाँ, ATP चाहिए, STP चाहिए, जस्ट लगाया, नहीं भी लगाया तो भी बात अलग होती थी, वो डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन अभी बहुत सारा चेंज हुआ है, यानी हालांकि मैं देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपका प्रोडक्शन की फैसिलिटी होने के पहले लगता है, ATP, STP, तो वो एकदम शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये शिफ्ट के भी जो रीज़न है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बहुत सारा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजीज का मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं ये फील्ड में आया था तो उस टाइम आप जब वेस्ट वाटर छोड़ते हो बाहर, तो उस टाइम 100 BOD का लिमिट हुआ करता था, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ये पकड़ के चलिए 100 BOD। आज के डेट में लेस देन 10 BOD। आज के डेट में हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आप सोचो, इतना बड़ा शिफ्ट और इतने जो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं लेस देन 10 BOD, इनफैक्ट कुछ दिनों में लेस देन 2 BOD भी हो जाएगा, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है। तो ये सारी चीज़ें होगी कैसी अनलेस एंड इफ आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं करते। तो सबसे बड़ा जो NVCare का USP रहा वो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, उसके लिए जो R&D वर्क है वो हमारे यहाँ पे होता है, हमारे लेबोरेटरी में होता है। और बिफोर हैविंग एनी प्लांट ऑन साइट, वो हम जो वाटर का क्वालिटी है वो लैब में निकाल के दिखाते हैं।
तो उसमें भी ये जो करंट ट्रेंड में क्या ZLT बहुत पॉपुलर है कि हर कोई कह रहा है कि ZLT होना चाहिए, ZLT होना चाहिए।
वाह, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको भी ZLD आपके लेवल तक पहुंचा है, यानी रियली बहुत बड़ी बात है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये करंट ट्रेंड है, जहां पर कोई भी इंडस्ट्री, टिपिकल इंडस्ट्री अभी उन्होंने पकड़ा है, जैसे कि मैक्सिमम देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी ZLD नॉर्म्स आए हैं। कोई भी इंडस्ट्री उसका एक सिंगल ड्रॉप भी उसके प्रीमाइसिस के बाहर नहीं छोड़ेगा, और जो भी पानी वो वेस्ट कर रहा है वो पूरा का पूरा रिसाइकल होके उनके प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाएगा, वो कंसेप्ट से अभी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा शिफ्ट है ये इंडस्ट्री में। हालांकि थोड़े से चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन ये हो जाएगा सर, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है।
ग्रेट मंगेश, हम जानना चाहेंगे, देखो आपका फील्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी आपने अभी भी 2-3 जार्गन हमारे तरफ छोड़ दिए, BOD छोड़ दिया, ZLD छोड़ दिया, तो अब व्यूअर्स को अगर बहुत आसानी से आपके बारे में समझना है तो एग्जैक्टली क्या आप बोलना चाहोगे?
देखिए, कोई भी फील्ड चैलेंजिंग होता है तो ही एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं, है ना। नॉर्मल कंडीशन में कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। लेकिन आपने अच्छा ये बात की, ये सब्जेक्ट कॉमन पब्लिक को भी समझना चाहिए। तो सिंपल वे से अगर हम समझाते हैं, कोई भी पानी हम जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद वो वेस्ट होना ही है, कुछ भी करो तो। जिसे हम बोलते हैं 72-99.9% हमारा वेस्टेज होता है, राइट। तो ये जो भी वेस्ट जा रहा है तो ये एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, है ना। तो हार्मफुल क्यों है? वो पानी के अंदर जो वेस्ट हुआ तो उसके अंदर जो भी पैरामीटर, जो भी घटक है, जो भी क्या बोले एलिमेंट्स है, उसके वजह से वो खराब हुआ और उसके वजह से हम बाहर छोड़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हम बाहर छोड़ रहे हैं तो वो जो जिस वजह से खराब हुआ है उसको निकालो। तो पानी आप ऑटोमेटिक पानी वैसे भी खुद में पानी तो प्योर है,
प्योर ही है, यस, है ना। हम ही मिक्सिंग करते हैं, हम ही खराब करते हैं।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
इस टॉपिक को लेके आपने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ, और ये आपकी विजन भी है कि आप बहुत बार मुझसे आपने शेयर किया है कि ये शिफ्ट मैं इंडिया में लाना चाहता हूँ कि लोग इस कचरे को कचरे से पैसा कैसे बनाए या वेल्थ कैसे बने, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस विजन के बारे में, बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए।
सुधीर जी, बहुत ही क्या बोलते हैं, पास वाला टॉपिक आपने छेड़ा है। देखो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वेस्ट है ना, वो वेस्ट है नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हम उसे वेस्ट बोलते हैं वो बात अलग है, क्योंकि लास्ट जो मैं 28-30 साल से इंडस्ट्री में हूँ ना, उसी में से तो मेरा अभी घर जो चल रहा है उसी में से चल रहा है ना।
सर चल रहा है कितने चल रहे हैं आपके?
मेरा घर चल रहा है, बाकी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे एम्प्लॉयज है, सप्लायर्स है, उन सभी का घर चल रहा है मिंटू से। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है सर, और इंडस्ट्री का खाली इंडस्ट्री को देखने का नजरिया वो अलग है। आज के जो एजुकेटेड लोग बाहर निकल रहे हैं उसको लगता है यार वेस्ट में क्या काम कर, लेकिन वेस्ट में सारा है ना, अगर मुझे पूछते हो तो। इसका अवेयरनेस लाने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए वो बुक है बेसिकली। उसमें अलग 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 9-10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज का मैंने जिक्र किया है, और वो इंडस्ट्री में आप जाके उसको अंडरस्टैंड करके, उसका समझ लेके आप कैसे इंडस्ट्री फॉर्म कर सकते हो, वो उसमें बताया गया है।
इनफैक्ट अगर मैं हमारे फील्ड से जुड़ता हूँ शास्त्रों से,
अच्छा,
तो कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है बेस्ट, और कमल जो है लक्ष्मी का प्रतीक, तो लक्ष्मी जो वहीं पे, और देखा जाए तो जमीन के नीचे अगर जो भी हम उत्खनन करेंगे वो तो कचरा ही है, है ना। अगर हम फॉसिल्स की बात करें वो कचरा है, या जो मतलब जो भी है नीचे, और उस कचरे में ही पैसा है, मतलब वो कचरा बनता है ऑयल, वही कचरा मतलब गैस बनता है, वही कचरा जो है डायमंड बनता है। तो आपने जो बोला वो शास्त्रों में भी बोला गया कि वेस्ट ही वेल्थ,
एब्सोल्युट,
है ना, इस तरह से भी हमको पता चलता है। तो मैं और एक पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके फील्ड में अगर किसी भी व्यक्ति को वेस्ट टू वेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बिजनेस करना है, तो उस व्यक्ति में क्या वो गुण रहने चाहिए जिसके कारण वो ये सक्सेसफुली वो कर पाए?
देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, जो उसके जो बेसिक रूल्स है वो सभी फील्ड में सेम है। ये फील्ड में आने के लिए जो एक्स्ट्रा जो लगेगा बेसिकली, वो वेस्ट के प्रति प्यार होना चाहिए, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वेस्ट को समझने की कला होनी चाहिए, उसको देखने का नज़रिया डिफरेंट होना चाहिए, और उसके ऊपर आरएनडी करने की आपकी इच्छा हो। विदाउट आरएनडी नहीं होगा। अब जो वेस्ट को आप लेके उसको सोना बना के बेच रहे हो तो लोग पागल नहीं है ना। तो वो समझ, वो परसेप्शन, वो अगर आप चेंज करते हो तो डेफिनेटली। बाकी तो एंटरप्रेन्योरशिप के तो आपको मालूम है जो बेसिक्स है वो तो होने चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट है, मुझे ये लगता है सर, आई डोंट नो ये होगा नहीं होगा, वेस्ट इंजीनियरिंग करके एक डिफरेंटली सेक्टरी फॉर्म होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, वेस्ट इंजीनियरिंग, जहाँ पर अगर ये फॉर्म होता है ना सर, मैं बोलता हूँ ये दुनिया में कचरा नहीं रहेगा।
करेक्ट,
सब जगह से कचरा उठाएंगे लोग। सर मैं जापान गया था ना, वहाँ पे ये सारा बेसिकली बहुत सारा वहाँ पे कचरा फॉर्म होता है, इन द फॉर्म ऑफ जो भूकंप आता है ना, उसके वजह से वो सब घर वगैरह पड़ते हैं, लेकिन वो उसको रिसाइकलिंग करने वाला अलग सा इंडस्ट्री है वहाँ पे।
इंटरेस्टिंग।
तो हर एक चीज में देखने का नजरिया चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका काम।
इनफैक्ट मैंने MIDC में 8 साल काम किया, तो मैंने क्या देखा कि जो मैन्युफैक्चरर है,
अच्छा,
उससे अमीर वो आदमी है जो उनके यहाँ से स्क्रैप उठाता है। तो आपने जो बोला बेस्ट है, वेल बेस्ट है, तो मैंने कोई भी ऐसा गरीब स्क्रैप वाला नहीं देखा।
Absolutely.
जो शुरुआत करते तो गरीब रहते हैं।
Absolutely.
लेकिन विद इन 3 ईयर्स दे आर मोर रिचर। मोर वेल्दियर देन द मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, अमेजिंग। तो आपने इस बीच आरएनडी की बात की, आरएनडी होना चाहिए, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है जो आपने की, जो आप दुनिया को बताना चाहोगे, ये समथिंग विच नोबडी हैज अचीव्ड एंड वी हैव अचीव्ड, क्योंकि आपका आरएनडी है।
देखो सर, आरएनडी तो बहुत सारी की है, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ा सा साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है। पहला ना, कोई भी प्लांट में जो कोई टैंक होता है उसका रिटेंशन टाइम के ऊपर डिज़ाइन हुआ करता था, जैसे कि रिटेंशन टाइम 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, 20-25 घंटे तक रिटेंशन टाइम हुआ करता था कुछ भी ट्रीटमेंट होने के लिए बायोलॉजिकल। सर आज के डेट में वो 4-5 आवर्स तक आया है घंटा, और जो हमने स्टडी अभी किया है उसमें सर हार्डली 30 मिनट्स,
30 मिनट्स, मतलब 5 घंटे को आपने 30 मिनट्स रिड्यूस कर दिया,
20-30 घंटा इनिशियल, उसके बाद फिर डेफिनेटली कम होते आए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से।
वाओ,
अभी एक 30 मिनट्स तक आया है।
तो इससे शायद पावर बचेगा
सर, पावर बचेगा आपका जो इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, डेफिनेटली पावर उसमें ही आता है। जो साइजिंग है टैंक
जगह,
साइजिंग है जगह, जगह तो प्लांट्स के कॉस्ट से भी जगह महंगी है।
करेक्ट, तो और शायद पानी भी कम लगे, क्योंकि वही पानी तुरंत यूज करने को मिल रहा है, इसलिए कम पानी में भी हो सकेगा ऐसा कुछ?
हाँ, नहीं कम पानी नहीं बोल सकते, हालांकि जितना पानी निकल रहा है उसको ट्रीट करना ही है आपको, तो प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, टाइम जो बोलते हैं, जो पहला जो ज्यादा टाइम हुआ करता था, तो उसके वजह से कम टाइम।
दिस इज समथिंग वेरी न्यू इन द मार्केट, नोबडी इज अवेयर अबाउट दिस।
एब्सोल्युटली,
वाओ, ऑसम। दूसरी एक चीज़ है, देखो आप इतने सक्सेसफुल हुए और इतना, मतलब आज मैंने ये भी देखा कि गवर्नमेंट का जो टेंडरिंग हुआ तो आपका नाम एक ऐसी कंपनी के नीचे था जो 1500 करोड़ का टर्नओवर करती है, उससे भी ज़्यादा करोड़ का टर्नओवर करती है, एंड सेकंड वी आर यू, तो आपको चांस मिला उसका, उसका उस गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट में काम करने का। तो ये सक्सेस आपने कैसे, कौन सी वो हैबिट्स है आपकी जिन्होंने आपको इस सक्सेस तक पहुंचने में मदद की?
मुझे ऐसा लगता है सर, जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो डेली बेसिस पे उसके ऊपर कुछ ना कुछ होते रहेगा, कुछ भी बेसिकली थोड़ा बहुत होते रहेगा ना, तो वो कंसिस्टेंसी आपको आगे जाके अलग सा नाम देती है। डेफिनेटली आप में कुछ नया करने की ये चाहिए, और इनोवेशंस जो हम कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए बहुत सारे जगह पे ना मुझे सर मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, लोग मुझे ढूंढते ढूंढते आते हैं, और उसी वजह से काम होता है। तो इनोवेशन इज अ की एंड कंसिस्टेंसी इज अ की, तो ये दो,
रिसर्च एंड कंसिस्टेंसी।
एब्सोल्युटली,
पर एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये तो एक हो गया काम, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम होता है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर। तो वहाँ पे आपने क्या काम किया, कैसे खुद को इस काबिल बनाया कि इतना सारा वेल्थ आप क्रिएट कर पाओ या इतना सक्सेस आप प्राप्त कर पाओ?
देखो, बाय डिफॉल्ट बोलो, बाय नेचर बोलो, मेरी ना ऑलवेज कुछ ना कुछ नया सीखने का मेरा मन करता है ऑलवेज। जैसे देखो, मैंने वो प्राणी किलिंग सीखा है,
वाओ,
मैंने फोटोग्राफी सीखा है, बहुत कुछ करते रहता हूँ मैं, बहुत कुछ करते रहता हूँ, और शायद मुझे लग रहा है कि ये जो लर्निंग है,
आपने ग्राफोलॉजी सीखा है,
ग्राफोलॉजी आपसे सीखा है
yes.
तो ये सारा सर क्या रहता है, कोई भी एक चीज़ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप मल्टीपल थिंग्स करते हो ना, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है, और वो कहाँ कहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा आपको मालूम नहीं रहता, तो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे उसका प्रोग्रामिंग हुआ होता है, तो वो मेरे बारे में लगता है मुझे। लेकिन इससे भी बड़ा जो जो सारी चीज़ें वो मैं बताना चाहूँगा, वो डिस्क्लोज करना चाहूँगा, मैं हर एक चीज़ होने के बाद ना उसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ वहाँ तक। देखो, सीखने वाले बहुत सारे सीखते हैं आज के डेट में, लेकिन खाली सीखना ही नहीं है, लाइफ लॉन्ग सीखने में जाता है लोगों का, लेकिन वो सीखने का भला आप 100% नहीं करो, लेकिन 10% भी निकाल के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, खुद के एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो तो मज़ा आता है। और मैंने हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सर। सर आप जैसे बोल रहे कि ये वेल्थ का, ये सक्सेस का क्या राज है, कुछ राज नहीं है सर, एवरी डे न्यू एक्सपेरिमेंट, उसमें कोई गिरने वाली चीज़ देखता नहीं, प्रोजेक्ट भी नहीं करता कोई, है ना, तो जब भी कोई सक्सेस होता है तो वही चीज़ देखा जाता है। तो मुझे ये लगता है डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इज अ की फॉर।
तो देखिए, अभी लाइफ के ना अलग अलग पिलर्स कहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तो आप ये तीनों पिलर्स को इस मोमेंट पे कैसे बैलेंस कर रहे हो, इतना सारा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते चलाते, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स?
सर देखो, आज 20-22 साल हुए कंपनी को, है ना, और लास्ट 5 साल से एक छोटा सा शिफ्ट आया, अगेन वो ड्यू टू लर्निंग, कि आज के डेट में मैं ऑटोमाइज कर पाया हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कि प्रपोजल है, प्रोजेक्ट्स है, प्रोसेस है। और ऑटोमाइजेशन में हुआ कैसा कि एक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर आज कंपनी चल रहा है। तो मानो मैं एक महीना भी नहीं जाता हूँ आज के डेट में, हालांकि मुझे जाना पड़ता हो, मेरा इंटरेस्ट है, नहीं भी जाता तो भी वो सिस्टम की वजह से कंपनी चल रहा है। सो दैट इज द सिस्टम्स which we have implemented in our
office. पूरा business automate करके रखा है।
business automate
अगर आपने दूर से भी देखा तो चीजें चलती रहेगी,
चीजें चलती रहेगी।
हाँ, तो ज़्यादा involvement की ज़रूरत नहीं है। research already होके है, क्या देना है, R&D होके है, सब कुछ standard set हो गए।
absolutely
amazing, great, अच्छा।
और definitely लोग तो होने चाहिए सर, क्योंकि खाली systems and processes है वो नहीं, उसको follow करने वाले भी होने चाहिए। तो I am quite fortunate, मेरे पास 20-15 एक साल से वही लोग है।
हमने आपका जो लोगो बनाया था
जी,
तो पहले लोगो में भी एस्पेक्ट था कि लोग जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक नहीं जाएंगे।
ओके,
तो वो एस्पेक्ट हमने लोगो में भी बरकरार रखा।
क्या बात है ना, तो
दैट वाज योर स्ट्रेंथ, बीइंग सपोर्टिव, बीइंग हेल्पफुल, बीइंग गाइडिंग। मतलब मेरे हिसाब से आपके जो एम्प्लॉयज हो वो आपको बॉस ना समझते हो, एज अ गाइडिंग
सर। आप तो लोग एक्सपर्ट हो, डेफिनेटली आपको उसकी जानकारी है, और डेफिनेटली जो मेरे जो स्ट्रेंथ्स है उसमें ये सारी चीज़ें आती है कि आई नेवर बीन अ बॉस काइंड ऑफ एटीट्यूड कभी मेरा रहा नहीं एम्प्लॉय के प्रति। दे फील इट एज अ फ्रेंडशिप और काइंड ऑफ यू नो, सो वो मेरे इसमें है सर।
Awesome.
और उसको आपने एक्सप्लोर किया, दैट्स अ ग्रेटेस्ट थिंग सर,
लोगों से पता चल जाता है। तो yes. और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये तो हो गया रिगार्डिंग योर बिजनेस, बट हेल्थ को लेके, क्योंकि क्या आपको लगता है हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए?
सर 100%, क्योंकि लाइफ में आपको सक्सेस मिला, वेल्दी हुए, बहुत सारा ये किया, लेकिन उसका एंजॉय कैसे करोगे? अगर आप बीमार हो, अगर आप उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? ठीक है, आप सोशल एंगल से देख रहे हो, आपके एम्प्लॉय की तरफ से, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन कोई भी चीज़ आप मिल रही है आपको, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे तो मतलब नहीं है। तो हेल्दी रहना उसके रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
है। उसको क्या रूटीन है आपका हेल्थ के लिए, व्हाट डू यू डू
हेल्थ के? रियली सर मॉर्निंग वॉक होता है, एक ब्यूटीफुल जगह पर रहते हैं सर, आपको भी मालूम है। तो सुबह वॉकिंग होता है, उसके बाद प्राणायाम योगा, हार्डली मेरा मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का वो डेली रूटीन है, जिससे फिट एंड फाइन।
तो 90 मिनट्स आप देते हो अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए, ताकि स्वस्थ रहे और बिजनेस में कुछ कर पाए। साथ ही साथ मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ आपके मनी मैनेजमेंट से।
अच्छा,
तो आपने जिस तरह से वेल्थ क्रिएट किया है, मतलब अभी ज़्यादा तो जो आपके प्रॉपर्टीज है वो लोन फ्री है, इनफैक्ट वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा कॉर्पस आप कर पाए हो। अभी ऐसी कंपनी अपने बनाई है कि कंपनी में टर्नओवर कुछ भी हो, प्रॉफिट होना हो, कंपनी विल सस्टेन फॉर अनदर 10 इयर्स, दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ कंपनी यू आर मेड। तो आप जो देख रहे हो, ये सभी लोग, बहुत सारे लोग, मतलब मैं जब आप पढ़ाता हूँ, हमारे भी 4,000 स्टूडेंट्स, उसमें से मैं कहूँगा तो 3,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पैसे को लेकर परेशान है, कमाते बहुत है लेकिन समहाउ वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो क्या कुछ टिप्स आप ऐसे देना चाहोगे जिसकी वजह से वो ऐसे कुछ कर पाए कि पैसे उनकी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाए?
सर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हालांकि इसका आंसर सबको मालूम है, बट देन वो फॉलो
आपके प्रिंसिपल जो आपने इंप्लीमेंट किए। यस,
मेरे जो प्रिंसिपल्स है, देखो सर, मेरा एक प्रिंसिपल है सबसे, जो मैं हर एक को बताता हूँ, मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। लोगों को लगता है कि मुझे 1.5 लाख का पेमेंट है, मुझे 2 लाख का पेमेंट है, मुझे, अरे लेकिन सपोज 2 लाख का आपका पेमेंट है, उसमें से 1.95 आप EMI भर रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, और आपके पॉकेट में कुछ बच ही नहीं रहा है सेविंग के लिए, तो वो गलत है। आप इतना खर्चा करो जहाँ तक कुछ अब सेव करो। मेरे ख्याल से कंपलसरी 20-25% सेविंग में जाना चाहिए। अभी सेविंग कैसे कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
पर इसके ऊपर बुक है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो उसका कहना है, मतलब हाउ ही बिकेम अ रिच पर्सन, तो उसका कहना ऐसा ही, उसने परसेंटेज कम बताए थे, लेकिन अभी जिस तरह का महंगाई बढ़ रहा है तो 25% शायद
सर
जायज हो जाए। उसने कहा कि 10% आप पहला सेव करो, उसके बाद खर्चा करो। जब मैं आपसे भी बात कर रहा था तो आपने भी सिमिलर प्रिंसिपल मुझको भी बोला था कि पहले सेव करो फिर खर्चा करो, और आपने कहा था कि लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चा कर लेते हैं, बचे हुए में से देखते हैं कि अब कितना सेव करना है। तो इंटरेस्टिंग है,
तो वो सारी चीजें हैं। और दूसरा फिर होता क्या है, सेविंग में भी, सेविंग मैं FD बैंक में सेविंग ऐसी नहीं बात, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आप कहाँ पे कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स, अगर आपका शेयर को आप डरते हो, हालांकि उसके लिए भी थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मेरा भी नहीं होता है सर वेरी फ्रेंकली। तो मैं म्यूचुअल फंड में सेफली ये करता सर, मेरे ख्याल से ईयरली 15-20% उसमें से मिल जाते हैं। तो आपका रिस्क एपेटाइट क्या है उसके हिसाब से अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली सेविंग हो जाएगा।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके फैमिली से भी मुझको पता चली
थी,
वो थी बजट। मतलब हम लोग मॉल में जाते हैं तो हमारा ऐसा आदत है, गाड़ी चल रही है मतलब वो बास्केट चल रहा है, जो लगा कि ये टेस्ट फुल है तो डाल दिया, ये अच्छा है तो डाल दिया, तो वी नेवर लुक एट द बास्केट साइज। बट आपकी फैमिली ने मुझको बताया था कि आप जाते हो तो जो लिखा है वही बास्केट, वो क्या है मतलब व्हाट एग्जैक्टली?
सर देखो क्या है, आजकल कोई भी मॉल कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाओ तो बहुत कुछ अट्रैक्टिव है, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा। तो मेरे फैमिली के साथ यही कहना है, आप जो लिखोगे वही लाओगे। क्या होता है सर, मोस्ट आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, कोई भी मॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें लेनी है वो तो लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कहाँ पे डिस्काउंट रहता है, कुछ कहाँ पे रहता है, अननेसेसरी हमारा बकेट हम फिल करते जाते हैं। और उससे क्या होता है, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है उसका कितना घर में यूज है क्या नहीं,
पहले से बॉटल्स पड़े रहते हैं हमने ऐसे ले लिए और
फिर भी उसके
है ना, अभी हमारे पास देखा तो हनी के 15 टाइप्स के बॉटल्स और कोई यूज नहीं कर रहा है।
तो ये सर ये अननेसेसरी चीज होता है और मेरे हिसाब से ये कम होनी चाहिए, नहीं मैं बोलूंगा लेकिन कम तो होना चाहिए अगर आप
देखिए।
और ये कम कैसे होगा, तो उसके लिए ये फंडा है, आप लिखो, अगर लेना है तो लिखो, अगर वहाँ पे जाके मतलब तो उससे क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है और फिर आप आपको लेना है ना तो नेक्स्ट टाइम आ जाओ लेके जाओ, तो वो बात थोड़ा सा चीज़ है।
इंडस्ट्री की बात करते हैं आपकी, तो अगले 10 साल 5-10 साल का अगर हम विजन रखते हैं तो क्या लगता है आपकी इंडस्ट्री में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना या क्या होने वाला है आपके हिसाब से?
सर जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग, ये तो एवरीडे नीड है सर। आज आप पूरा ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो जहाँ पे हम रिवर पोल्यूशन की बात करते हैं, ये कहाँ से आ रहा है रिवर पोल्यूशन? आपके घर से पानी जो निकल रहा है, आपके इंडस्ट्री से निकल रहा है, आप अलग अलग कुछ कर रहे हो तो रिवर तो पोल्यूट होने वाला है, राइट? तो ये नेवर एंडिंग है। देखो हम डेवलपिंग नेशन है तो ऐसा नहीं है कि हमको डेवलपमेंट नहीं करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन ये डेवलपमेंट के जो बाय प्रोडक्ट्स है वेस्ट, उसको तो हैंडल करना है। और जब तक डेवलपमेंट रुकेगा नहीं तब तक वेस्ट रुकेगा नहीं, तो आई कैन सी इज अ फ्लरिशिंग। ये जो इंडस्ट्री है डे बाई डे ग्रो हो रही है। और विजन क्या सर इसमें, मैं तो बोलता हूँ जैसे मैंने बताया कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग फॉर्म होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए।
आपने एक बात ये भी बोली थी मुझको कि आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हो वेस्ट टू वेल्थ का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, कि बिजनेस कैसा करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे R&D करना चाहिए, तो उस विजन के बारे में कुछ बताइए।
जैसे कि मैंने अभी शेयर किया कि ये वेस्ट को देखने का जो नज़रिया परसेप्शन है वो डिफरेंट है, बहुत कम लोग हैं जो इसकी ओर आ रहे हैं, और जो भी है उनको अनफॉर्चुनेटली हमारे फील्ड में सर 80% लोगों को वो क्या करते हैं वो भी मालूम नहीं रहता है, STP का फुल फॉर्म क्या रहता है, लेकिन वो STP फील्ड में काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी फील्ड में आपको एक टॉप नॉच एक अचीवमेंट मिला है तो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज आप काम करोगे नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन एक लिमिटेशन आएगा, एक सर्टन लेवल के बाद अपन लिमिटेशन आएगा।
तो मंगेश जी आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा इनोवेशन बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, तो अगले 5-10 साल में आप अपने इंडस्ट्री में किस तरह का प्रोग्रेस देख रहे हैं?
सुधीर जी जैसे मैंने अभी बात किया कि इंडस्ट्री डे बाई डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहा है। एनवी केयर का USP जैसे मैंने बताया आपको कि R&D है, एवरी डे इन आउट हम कुछ ना कुछ ट्रीटेबिलिटी स्टडीज R&D करते रहते हैं। तो नेक्स्ट 5 साल में अगर एनवी केयर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मेजर जो सिटीज़ है इंडिया में वहाँ पे एनवी केयर के ऑफिस होने जा रहे हैं, उसकी अगेंस्ट ने क्या बोलते हैं अलग अलग एरिया डिफाइन भी किए हैं और ये सारी हो रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया हमने 2 कंट्रीज़ में ऑलरेडी कोविड के पहले ऑफिसेस किए थे, दुबई में और मलेशिया में, बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा सा ये हुए, बट देन अगले 5 साल में हम ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ में रीच हो हमारा, वहाँ पे ऑफिसेस हो, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है सर ये फील्ड में। और मैं अपील करूँगा जनरल इसमें अगर ये मोमेंट के साथ आप ज्वाइन होना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम फॉर दैट।
वाह, बहुत बड़ा विजन रखा है आपने अगले कुछ साल के अंदर. हम चाहेंगे कि ये विजन मैनिफेस्ट भी हो. और मैंने मेरे हिसाब से अभी इस मोमेंट पे हवा और पानी और जमीन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है. और उसको प्यूरीफाई करना है या उसको बेटर करना है, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है ना इस इंडस्ट्री में इस मोमेंट. तो बहुत मतलब भाई, अगर हम लोग सदगुरु को भी देखते हैं तो वो भी पहले उन्होंने चालू किया था कावेरी, अब चालू कर रहे हो सेव सॉइल से, अभी आएगा हवा. मतलब दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली. चलिए अभी थोड़ा सा पर्सनल बातें भी पूछते कि जब आप नहीं हो बिजनेस में, तो ऐसे में या फिर बिजनेस को नहीं संभाल रहे, तो ऐसे में आपके फेवरेट पास टाइम या हॉबीज जो आप करते हो, जो क्या करते हो, मतलब हाउ डू यू लाइक टू एंजॉय?
सुधीर जी देखो, एज ए एंटरप्रेनर लोगों को लगता है कि बंदा एक्सट्रोवर्ट है, लोगों को मिलना अच्छा लगता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम इंट्रोवर्ट गाय और मुझे मेरे स्पेयर टाइम में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो हॉबी आप बोल सकते पढ़ना. और अगर आप खेलने की बात करेंगे तो आजकल मैं पूल खेलने लगा हूँ, तो पूल केस में भी मुझे अच्छा लग रहा है. चेस खेलने में मुझे अच्छा लगता है और कैरम मुझे अच्छा लगता है. तो है, बट देन थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है सर अभी, और उसमें मैं रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो भी विजन देखा है उसके प्रति अगर आगे जाना है, पढ़ना है, तो बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें सीखनी पड़ेगी.
तो ये सीखने की बात करते हैं ना, तो मैं कुंडली का थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि कुंडली में ना मर्क्यूरी ये कारक माना जाता है दसवें घर का. दसवें घर में हम लोग बिजनेस या करियर को देखते हैं. तो कुंडली का कहना ही है, मर्क्यूरी जो है स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट लर्निंग की बात करते हैं, तो कुंडली का भी करना ही है कि अगर आपको करियर को एस्टेब्लिश करना है या ठीक करना है, तो हर रोज पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है. जो आपने फॉलो किया, तो जो भी मतलब कुंडली कहता है कि जो भी व्यक्ति हर रोज कुछ नया सीखेगा, नया पढ़ेगा, वो व्यक्ति अपने करियर में, अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश रहेगा. तो लर्निंग समथिंग न्यू इज अ की टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, कुंडली का भी कहना. दूसरी मैं बात आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप जैसे नॉर्मली आप सूट वूट में रहते हो, अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते हो, एज अ बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर यू लुक लाइक वेरी वेरी इंप्रेसिव गाय, तो ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी लोग आपके बारे में गेस नहीं कर पाएंगे कि आपके अंदर ये भी व्यक्ति है?
अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल हूँ सर, मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल रिगार्डिंग चीज़ें करते रहता हूँ. आपको तो मालूम है कि लास्ट 65 डेज हम पारायण कर रहे थे, जो ज्ञानेश्वरी है, जो मैं खुद पढ़ रहा था सर. एवरीडे 10 पेज का मैंने खुद को चैलेंज लिया था, टारगेट लिया था, और अभी 3 दिन पहले ही पारायण फिनिश हुआ. सो आई एम अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ गाय, लेकिन आई डोंट नो ये इमेज मेरे लोगों तक पहुँचती है नहीं पहुँचती, आई डोंट नो. तो शायद मुझे ये लग रहा है कि आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो.
और ये भी है कि फन फीलिंग या फन फील्ड गाय है, जहाँ पे आप जब दोस्तों के साथ रहते हो तो बहुत मजा करते हो,
ये, ये, ये आप बता सकते हो सर.
तो ये लोग बाकी लोगों को नहीं पता चलता है कि आप
मुझे दोस्तों में रहना अच्छा लगता है, फन एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, और आई एंजॉय. मैं उस टाइम को क्या बोलते हैं, खुल के जीता हूँ, और स्टोरी बताना मुझे अच्छा लगता है, स्टोरीज छोटे छोटे.
यस, यू लाइक टू हैव माइक इन हैंड एंड टॉक टेल द स्टोरीज एज वेल. तो नेचुरल स्पीकर कह सकते हैं, नेचुरल टू टैलेंट है क्या आपको?
आई डोंट नो, लेकिन एज अ दोस्त करके आप मुझे बता सकते हैं ये सारी चीज़ें. लेकिन अच्छा लगता है मुझे स्पेयर करना.
तो बड़ा मज़ेदार था आपका अब तक का जर्नी, जहाँ पर हमने आपके बारे में इतना सारा चीज़ें जानी, आपके पर्सनलिटी के बारे में, आपके काम के बारे में. मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई मैसेज है जो हम आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे कि उन्होंने लाइफ में किस तरह से काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में? एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल टू द व्यूअर्स?
मुझे डेफिनेटली मेरे लाइफ के ऊपर से मैं आपको मेरे जो एक्सपीरियंस के ऊपर से बताऊँगा, जो भी फील्ड आप चूज कर रहे हो उसमें मास्टरी ये करो. अगर वो डेफिनेटली उसके पहले नॉलेज आपको आना चाहिए, नॉलेज के बाद उसके रिगार्डिंग स्किल मास्टरी आपको डेवलप करना है. ये दो चीज़ आपके पास आए ना सर, तो यू कैन विन द वर्ल्ड, मैं तो बोलता हूँ. बाकी फिर बाकी की चीज़ें वो ऑटोमेटिक है आपकी लाइफ, वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट है। ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई यूट्यूब चैनल देखा, थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, दो दिन तीन दिन चार दिन काम किया और फिर मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखोगे नहीं होता है। आप भी देखो सर, आज आपने भी 12-13 साल एक चीज़ के ऊपर, एक इसके ऊपर प्रैक्टिस करके मास्टरी मिला, कि फिर लोगों को क्या लगता है कि लोगों को लगता है अरे एक नाइट में ये सुपरस्टार हो गए, नहीं है वैसा। तो हार्ड वर्क को रिप्लेसमेंट नहीं है मैं बोलता हूँ, और लक एक 3-4-5% रहेगा हर एक, लेकिन लक भी जब होता है जब आप एवरीडे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा यही सिंपल
लक फेवर्स द ब्रेव कहते हैं।
तो हार्ड वर्क करो और मास्टरी मिला। हार्ड वर्क का मतलब वो गधे वाला हार्ड वर्क नहीं है, उसमें भी स्मार्ट एक्शन, स्मार्ट क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है, सक्सेस तो मिलना है सर।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से मंगेश जी ने अपनी पूरी लाइफ में हार्ड वर्क, रिसर्च, एक्सपर्टीज, नॉलेज और जो लक है, जैसे उन्होंने कहा कि लक उन्हीं को मदद करता है जो हिम्मत करते हैं, एफर्ट लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त किया। और उन्होंने बार बार ये बहुत जगह पे इटरेट किया है कि जो व्यक्ति पढ़ता है, जो नया कुछ सीखता है, वही व्यक्ति आगे जा पाता है। तो बहुत अच्छा था आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया मंगेश जी, और आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप कि आगे भी आप बहुत बड़ा अचीवमेंट करोगे, आपकी रिसर्च में और ज़्यादा नई नई चीज़ें खोजोगे और हमारे पास वापस से आओगे वो सब चीज़ें शेयर करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। थैंक यू वेरी मच।